Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ke 5th adhyay ka 7th hai. पहले उच्चारण कर लें. गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता सविश्वरूपः त्रिगुणा त्रिवर्त्मा प्राणाधीपः संचरति स्वकर्मभिः गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता सविश्वरूपः त्रिगुणा त्रिवर्त्मा प्राणाधीपः संचरति स्वकर्मभिः गुणान्वयो यः. यह जो आपका श्लोक है, इस श्लोक में त्वम पदार्थ का वर्णन है, प्रतिपादन है, शोधन नहीं है. शोधन तो आगे होगा, अभी दो चार श्लोक तक त्वम पदार्थ का प्रतिपादन करेंगे. इसके पहले तत् पदार्थ का भी वर्णन आ चुका है. तत् और त्वम, तत्पद वाच्य क्या है और तत्पद लक्ष्य क्या है, यह तो आपने श्रवण कर लिया. अब त्वम पद का वाच्यार्थ क्या, लक्ष्यार्थ क्या? तत्पद का वाच्यार्थ, वाच्यार्थ को का मतलब होता है कि जिस शब्द को सुनने के बाद नियम पूर्वक दिल दिमाग में जिस अर्थ की, अर्थ मतलब आकार प्रकार की प्रतीति हो, उसका नाम है वाच्यार्थ. जैसे हमने हाथी कहा, हाथी, तो हाथी सब सुना आपने और आपने सुनी हाथी शब्द और दिमाग में आकार बन गया, बड़ा भारी, काले काले, पहाड़ की तरह जिसका शरीर, चार पिलर की तरह जिसके पैर, लंबी रस्सी की तरह इसका पूंछ और सुपाक की तरह इसका कान. बस हमने खाली हाथी कहा, आप इतना आकार प्रकार समझ लिया, इसको बोलेंगे वाच्यार्थ. तो हाथी शब्द का वाच्यार्थ हो गया, जो बड़ा भारी एक जानवर है. ऐसे तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य, जो जगत का नियंता चैतन्य है, उसी को हम लोग क्या बोलते, तत्पद से. वही जो चैतन्य है निर्गुण निराकार है, तो निर्गुण निराकार तो तत्पद का लक्ष्यार्थ कहलाएगा जो आगे आने वाला है. पर यहां तत्पद के वाच्यार्थ को बताया था कि तत्पद का जो वाच्यार्थ है, जिसको आप ईश्वर कहते, भगवान कहते, जगत का शासक है, पालनहार सृजनहार, वह तत्पद का वाच्यार्थ. और वह भी जब समझ में नहीं आता है तो भगवान और नीचे उतर आते हैं. अब कोई प्रेमपुरी के वो सातवें माले पर जा नहीं पाएगा बेचारा, तो क्या होता, ऊपर से नीचे उतर आते हैं, तो लूला लंगड़ा सब मिल लेता, बड़ा खुश हो जाते कि बड़ी कृपा, हम ऊपर चढ़ नहीं सकते तो आपने कृपा करके नीचे उतर आए तो सबको दर्शन लाभ. ऐसे भगवान भी वही अवतार सगुण साकार में आ जाते। अवतार मतलब उतर जाना, सगुण साकार में आ गए राम कृष्ण शिव आदि। तो तत्पद का वाच्यार्थ हो गया सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य, जिसको भगवान कहते परमात्मा कहते, वह तत्पद का है आपका वाच्यार्थ। अब यहां पर त्वम पद का वाच्यार्थ विचार कर रहे हैं। त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है? त्वम पद का लक्ष्यार्थ तो आत्मा है, कूटस्थ है हाँ, पर त्वम शब्द का वाच्यार्थ तो सामान्य रूप से त्वम पद का अर्थ हम लोग करते हैं जीव। अब जीव शब्द की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्यान है, बल्कि एक पुस्तक भी दिमाग में दुखवा गया जीव शब्द बोलते बोलते, छोटी है वो करना चाहिए आप लोगों को, केवल 10 श्लोक उसमें सिर्फ है, आदि शंकराचार्य भगवान का है 10 श्लोक की हाँ, और उसके ऊपर विस्तार से व्याख्यान है मधुसूदन सरस्वती जी का, जिसको कहते हैं सिद्धांत बिंदु। उस पुस्तक में बहुत सारे पदार्थों का वर्णन है, मतलब जीव के कितने कितने व्याख्यान हो सकते हैं। ये मनोवृत्ति का अर्थ क्या है, आवरण क्यों मानते, आवरण का प्रयोजन क्या है, अविद्या क्या है, माया क्या है, परमात्मा क्या है, ये सगुण साकार क्या, निर्गुण निराकार क्या, सारे बातों का विस्तार से वर्णन किया है। सिद्धांत बिंदु नाम है, आदि शंकराचार्य 10 श्लोकी के ऊपर है, 10 श्लोक मूल है और टीका है मधुसूदन सरस्वती का, जो द्वैत सिद्धिकार है हाँ, द्वैत सिद्धिकार है ना मधुसूदन सरस्वती, उस पुस्तक का नाम सिद्धांत बिंदु है, सभी जगह मिल जाती है। नमना चाहिए तो मेरे पास 2 पुस्तक है अभी प्रेजेंट में, नहीं उधर नहीं मिलेगी, मेरे पास 2 पुस्तक है लेकर आया हूँ, वहां किसी ने दिखाया बहुत अच्छा है, तब ने कहा तो उन्होंने दे दिया मुझे 2 पुस्तक झिरक्स, दोनों पुस्तकें। उसमें क्या है आपको पूरा साफ हो जाएगा कि तत्त्वम और यह विद्या माया, जैसे मानो किसी ने जीव शब्द का अर्थ किया अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, किसी ने कहा कि विद्या प्रतिबिंबित चेतन का नाम जीव है, किसी ने कहा विद्या उपाधि वाले का नाम जीव है, और पंडसीकार ने तो अर्थ कर दिया कि अविद्या यद अधिष्ठानम लिंग देह पुनः तिच्छा लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्चते, इन सारे बातों को एक जगह विस्तार से विचार किया है सिद्धांत बिंदु में। तो जीव शब्द का यहां पर वाच्यार्थ बताया है 7वें श्लोक में, लक्ष्यार्थ बाद में बताएंगे। गुणान्वयो, गुण से अन्वित है, मतलब कि बेचारा बंधा हुआ है। गुण शब्द का हिंदी में अर्थ रस्सी होता है, गुण शब्द संस्कृत है, 3 रस्सी बनाते हैं ना, 3 इस तरह से वो जो कारीगर लोग होते हैं, 3 धागे होते हैं, धागों को हाथ से करके या मशीन से रस्सी बनती है। ये जीव भी बेचारा सत्व रजस तमस 3 गुण से बंधा है, किसी को केवल 1 धागे से बांध कर देखो पूरा परेशान, उसका स्वातंत्र भंग हो जाता है, मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे या जो जीवात्मा ज्यादा खुरा पाती था, ये 3 गुण से बांधा, 3 रस्सी से। जो गाय बहुत ज्यादा भागते हैं ना, तो गांव में क्या करते, उसके पैर में भी रस्सी बांध देते, गले में बांध देते और एक लटका देते रस्सी, 3 रस्सी होती, 1 तो गले में बांधते और दूसरा उसके पीछे पैर को बांध के रखते और गले में एक डंडा लटका के रस्सी बांध देते, तो पीछे का बांधने से पीछे के पैर से खुराफात नहीं, और आगे डंडा लटका दिया गले में तो आगे का पैर ज्यादा नहीं भागेगी। वैसे परमात्मा ने किया, ज्यादा खुरापाती था ना, तो तीन गुण के रस्सी से संबद्ध बांध दिया, फिर भी ये खुरापात बंद नहीं करता, यह फल कर्म करता, ये सारे फलों के कर्म को करता है, अफल कुछ भी नहीं करता। पहले सोच लेता है किस कर्म के करने से क्या फल मिलेगा, तो फल देने वाले कर्मों को करता है, चाहे दूसरे का कितना नुकसान हो, दुख हो, तकलीफ हो, कोई मतलब, अपने को फल मिलना चाहिए। अब जो है परमात्मा ने हाथी को बनाया, शेर को बनाया, सांप को बनाया, सबको बनाया स्वतंत्र, पर इसने देखा कि सांप को पकड़ के जहर निकाल लो तो बड़ा कमाई होती, उसको बंधन में डाल दिया, बेचारे शेर को पिंजरे बंद कर दिया, उससे फल मिल रहा ना, हाथी को भी बांध दिया जंजीर से। कहते एक बार ब्रह्मा जी के पास शिकायत कि ये सारे प्राणी, हाथी ने, सिंह ने, व्याघ्र ने, सांप ने, कि हम तो किसी को परेशान नहीं करते, ये आपका जो लाडला है, सबसे लाडला मनुष्य परमात्मा का, ये देखो हमको पिंजरे बंद कर दिया, शेर ने कहा, ये हाथी ने कहा कि हमें जंजीर से बांध दिया जंगल में घूमने वाला में प्राणी, और गीन का छोटा छोटा पूला खाने को देता है, पेट भी नहीं भरता। सांप ने कहा कि हमारे जहर को निकाल कर नचाता है। भालू ने कहा कि हमारे मुख को बांध करके नचा रहा है। यह आपका लाडला मनुष्य बड़ा परेशान करता। ब्रह्मा जी कहे तुम लोग झूठे शिकायत कर रहे, तुम्हारा इतना बड़ा पहाड़ की तरह शरीर, इतना पराक्रम सिंह में, इतना जहर सांप में, यह आदमी कैसे तुम्हें बांधेगा, कैसे बंद करेगा पिंजड़े में। ब्रह्मा जी ने सबकी शिकायत दरकिनार कर दिया, पर ज्यादा शिकायत हुई तो नारद जी को बुलाया, बोले नारद तुम भी बताओ ये सब सही बोल रहे कैसे ही। नारद जी ने कहा आपको भरोसा नहीं हो रहा तो एक बार आप भी देख लो, आपको भी आदमी छुट्टी कर देगा। ब्रह्मा जी बोले ऐसा हो नहीं सकता, बोले ठीक है समय आने पर। बस नारद जी ने एक मनुष्य को पकड़ा, वो मुंबई के किसी बहुत बड़े व्यापारी को पकड़ा, कहा कि तू यहां क्या व्यापार करता है, चल तुझे ब्रह्मा जी बना देता हूं, बस सारा व्यापार में तेरे हाथ में रहेगा। बोला ब्रह्मा, बोले हाँ। बोले महाराज मुझ मनुष्य को कौन ब्रह्मा बनाए, बोले मैं बनाता हूं नारद। ले लिए, बोले ऐसा करना एक एप्लीकेशन लिख। एप्लीकेशन लिखा नारायण के नाम और कहा कि तू नारायण के नाम से साइन कर दे। नारायण साइन कर दिया। अब उसको लेकर नारद जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, पढ़े, उसमें साइन किया था श्री हरि नारायण वैकुंठवासी, लिखा था कि आप पदमुक्त होना चाहते ना, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए विश्राम करो बड़े मजे से, ये जो पत्रवाहक है ये संभाल लेगा आपके कारोबार को, बड़ा जिम्मेदार, बड़ा कुशल कारोबार करने वाला है। जैसे ब्रह्मा जी ने पढ़ा, साइन देखा, आदर के साथ बैठाया, का कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी की छुट्टी कर दिए लाला जी। अब थोड़े दिन के बाद हलचल शुरू, उनका देखो स्वर्ग जाना है इतना रखो यहां, नहीं तो नरक वाले को बोला थोड़ा कुछ दो इनाम तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे। अब इस नरक वाले को स्वर्ग वाले को नरक, बड़ा उथल पुथल। देवताओं ने शिकायत किया नारायण से कि नारकीय जीव स्वर्ग में आकर बड़े भीड़ भड़ाका कर दिए। नारायण ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो रहा, बोले कि आजकल अब व्यवस्था हो रही, ब्रह्मा जी को बुलाया, बोले ब्रह्मा जी देखो तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही। बोले प्रभु मैं तो सेवा मुक्त हूं। बोले किसने किया? बोले वही आपने तो आदमी को भेजा था, वो आदमी जो है ब्रह्मा बन बैठा है। बोले मैं तो किसी को नहीं भेजा, लेटर दिखा दी आपका है पत्र। भगवान ने देखा, बोला ये जो है मनुष्य का काम है। देखो मनुष्य कितना चालाक, ब्रह्मा जी को भी पद से उतार दिया। ये जो मनुष्य है, मनुष्य बहुत चतुर है, सारे प्राणियों पर अपने लाभ के लिए शासन करता, बस फल मिलना चाहिए, लाभ होना चाहिए, इसलिए का फल कर्म करता, बिना फल के बिना लाभ के कुछ करता ही नहीं, ऐसा जीवात्मा है। कृतस्य और करने के बाद फिर चौगुना चाहता है। कृतस्य तस्य च उपभोक्ता, कर्मों के फल को भोक्ता बन के बैठ जाता है। स मतलब जीव, विश्वरूप त्रिगुण, विश्वरूप का अर्थ नाना, विश्व शब्द का अर्थ नाना, अनेक प्रकार के रूप वाला, एक दो तीन नहीं है, हजारों नाना इसके स्वरूप हैं। मतलब कि जिसके मन में जैसी वृत्ति, जैसा सोच समझ चिंतन, उसी के अनुसार एक कर्म का करता है। अब हजार आदमी बैठे हो तो हजार आदमी जो बैठे होते हैं सबकी सोच अलग होती है। कोई सोचता है कि सत्संग अच्छी चीज है, कोई बोलता है फालतू की चीज, व्यापार करना चाहिए, मुंबई आके व्यापार नहीं किए तो क्या हुआ, कोई सोचता है कि यहां आराम करो। तो जितना जीव है उनकी हजारों प्रकार की सोच समझ है, इसीलिए विश्व रूप कहा। किसी ने कहा भाई हाथी का तो एक रूप है, एक क्रिया है, सिंह का एक रूप एक क्रिया, सांप का एक रूप एक क्रिया, परंतु मनुष्य को पहचानना बड़ा कठिन है। कोई पहचान नहीं सकता है, इसलिए विश्व रूप कह दिया जीवात्मा के लिए, नाना रूप है। त्रिगुण और तीन गुण वाला है, त्रिवर्तमा, और इसके लिए तीन रास्ते हैं, औरों के लिए केवल एक ही रास्ता है, वह है भोग योनि। 84 लाख योनियों में सभी के लिए एक ही रास्ता है, वह है भोग योनि, पर मनुष्य के लिए तीन रास्ता खुला है। भगवान ने मनुष्य लोक में भेजकर कहा कि देखो तीन रास्ते हैं, जहां से मर्जी वहां से आओ जाओ। और कौन सा? एक है उत्तरायण, वर्त बोलते हैं रास्ते को, त्रिमल तीन, तीन वर्तमान रास्ते वाला है, देवयान उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन, तीसरा आपका हाँ जायस्व मृयस्व इत्येतत् तृतीयम स्थानम, तीसरा रास्ता है, बस जन्म मरो कीट पतंग की तरह, तीसरा है। जो लोग उपासना करते, कर्म करते, सत्कर्म करते, उन्हें तो देवयान से वहां जब जाता तो आइए आइए बैठ के लोग स्वागत करते, यही आगच्छ आगच्छ। और जो केवल कर्मानुष्ठान में लगे रहते, उपासना आदि नहीं, विचार नहीं, उन्हें है दक्षिणायन, वे जाते हैं आपके चंद्रलोक तक। और तीसरे वे प्राणी है, न जीवन में उपासना, न सत्कर्म, न अनुष्ठान, कुछ भी नहीं, उनके लिए का कोई बात नहीं, तुम यही रहना चाहते तो जाय समृष्व, बार बार जन्मो मरो और कीट पतंग आदि, कभी मच्छर बन गए, कभी कीट पतंग बन गए, दंश बन गए, ये तीसरा मार्ग। आपके पास अवसर है, चुनाव आपके हाथ में, तो त्रिवर्तमाय जीव है। प्राणाधिप, ये प्राणों का अधिप मतलब अध्यक्ष है, अधिठाता है, स्वकर्म भी संचरति, अपने कर्मों से संचरण करता रहता है, कौन? जीवात्मा। ये तो हो गया आपका श्लोक का अर्थ, भाष्य देख ले। जल्दी हो तो बता देना, ठीक धीरे धीरे कर देंगे, है ना। आप जैसा चाहेंगे वैसा। गुणान्वया इति, इति मतलब ऐसा, इति शब्द का अर्थ है ऐसा, गुण से संबद्ध है। गुणैः कर्म ज्ञान कृत वासनामयी अन्वयो यस्य सोयम गुणान्वयः। गुणान्वय का आचार्य ने अर्थ किया कि ज्ञान कृत वासनामयी, कृत मतलब जनित, ज्ञान से जन्य जो वासना, यहां ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं है, कर्म ज्ञान शब्द है। जैसा कर्मों का ज्ञान है, सोच समझ है, कर्म ज्ञान का अर्थ है जैसा कर्मों के विषय में ज्ञान सोच समझ, वैसी वासना होगी। वासना का इच्छा है, इच्छा होगी वैसा फिर करेगा, अंत में वैसा भोगना पड़ेगा। इसका दूसरा भी अर्थ कर सकते हैं आप, यहां द्वंद्व समास कर दो तो दूसरा अर्थ निकल जाएगा। कर्म और ज्ञान दोनों अलग अलग, संस्कृत का वैशिष्ट यही है कि जैसा जैसी व्युत्पत्ति करते वैसा अर्थ निकल जाता है। तो कर्म और ज्ञान दोनों अलग अलग, जैसा कर्म करता है ज्ञान मतलब उपासना, उसके अनुसार हमारे दिल दिमाग में इच्छा बनती है, वासना होती है, उससे अन्वय है, युक्त है,